समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, डेडलाइन पर चर्चा होगी, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत की भी जानकारी देंगे और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। परिक्रमा कार्यक्रम के संक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं वीसी प्रमोद। नमस्कार प्रमोद।
नमस्कार अलका, एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। एंड एज अलका राइटली सेड, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, बट वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
India and the UAE sign important agreements to enhance strategic partnership.
गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
Government releases digital brand identity manual to bring uniformity across government websites and digital platforms.
यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से रियाद में अमेरिका और रूस के बीच वार्ता जारी।
In women's Premier League cricket, Gujarat Titans giants to take on Mumbai Indians in Vadodara today.
और FIH Pro League हॉकी में भारतीय पुरुष टीम आज शाम भुवनेश्वर में जर्मनी से और महिला टीम स्पेन से मुकाबला करेगी।
And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we'll talk about Pariksha Pe Charcha. Alka, aapke bache परीक्षा देते हैं?
बिल्कुल, सबके देते हैं, हमारे भी देते हैं। और जब बच्चे परीक्षा देते हैं तो हमें अपनी परीक्षा की भी याद आ जाती है, जो बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, चाहे वो 10th का बोर्ड हो या 12th का बोर्ड हो, और एकदम छत पे धूप में बैठ करके क्वेश्चन याद करना, फिर वो 10 साल के पूरे क्वेश्चन पेपर्स। और केंद्रीय विद्यालय की जो बात थी उसमें तो सारी, उसमें ये भी नहीं था कि ये पढ़ लेना ये आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। पूरा आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो क्या बोलते हैं मैचिंग होती थी सारी चीजें, और जो परीक्षा की जो टेंशन होती थी, चूंकि मम्मी डैडी कहते थे कि नहीं आराम से कोई बात नहीं सब ठीक होगा, लेकिन ये अलग बात है कि उस समय बच्चे रेगुलर भी पढ़ते थे और बिल्कुल सिस्टमैटिक था, बहुत कुछ डिसिप्लिन भी था।
एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। मार्च एंड अप्रैल आर द मोस्ट स्ट्रेसफुल मंथ्स फॉर स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री। विद द क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, स्टूडेंट्स शट देमसेल्व्स इनडोर्स एंड बरी देमसेल्व्स अंडर अ पाइल ऑफ बुक्स, एंड बोथ दीज इयर्स आर द डिसाइसिव इयर्स ऑफ द एकेडमिक लाइफ। द एग्जाम प्रेशर ऑन टीनेजर्स इज ट्रेमेंडस। देयर आर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फैमिलीज एंड टीचर्स, एंड ऑल ऑफ व्हिच गिव इमेंस स्ट्रेस टू द स्टूडेंट्स। आपके टाइम पे आपको कुछ होता था स्ट्रेस?
नहीं, स्ट्रेस की तो बात ही नहीं थी, इसलिए नहीं थी। और वो चूंकि वक्त भी था, पहले क्या था कि आप अपने आप को सिर्फ बंद कमरों में नहीं रखते थे, आप खेलते थे, पूरा ग्राउंड था आपके पास। फैमिली जो होती थी, जैसे अगर किसी कोई परिवार हमारे घर आता था तो बच्चे भी उस परिवार के साथ क्या था कि मिलते जुलते थे।
Exactly.
लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है। आजकल क्या है कि आप चाहे किसी भी परिवार के पास जाएं, हर बच्चा या बड़ा या जो भी है उस परिवार का सदस्य, वो मोबाइल में बिजी है। तो कभी कभी तो ये लगता है कि मिलने किस लिए आ गए, जब मोबाइल ही देखना था तो अपने घर में बैठते रहे। तो ये जो चीजें थी ना, बिल्कुल। और क्या था कि इंटरेक्शन दोनों तरफ से होता था, तो स्ट्रेस की तो बात ही नहीं थी। और स्ट्रेस किस बात का था? आपको पढ़ना था, खेलना था, खाना पीना था और आराम से मजे से स्कूल जाना था।
एब्सोल्युटली, द स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम गिव्स राइज टू एंग्जायटी एंड अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट द परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम, इन व्हिच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेयर्ड हिज थॉट्स विद द स्टूडेंट्स।
जी हाँ, परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम की शुरुआत 10 फरवरी को हुई थी और इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का फॉर्मेट पूरी तरह से बदल दिया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उसके बाद इसके हर एपिसोड में अलग अलग सेक्टर्स के गेस्ट नजर आए और परीक्षा पे चर्चा 2025 की जो 8वीं श्रृंखला में आज संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त पात्रता परीक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा के मेधावी छात्रों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों ने कहा कि विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में सभी प्रकार की जानकारियों को नहीं संग्रहित कर सकते, ऐसे में उन्हें ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल करने का सुझाव दिया। सीबीएसई की वर्ष 2022-23 की बोर्ड परीक्षा में अव्वल रही राधिका सिंगल ने कहा कि पाठ्येतर गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। और प्रमोद, सबसे बड़ी बात यह होती है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यदि बच्चा खेल कूद, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, हर प्रकार की गतिविधियों में जब भाग लेता है तो ये एक स्ट्रेस निकालने का बहुत अच्छा
जरिया।
बिल्कुल, और हम लोग के चूंकि स्कूलों में क्या था कि जो स्पोर्ट्स का पीरियड होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप जब पसीने से तर बतर होते हैं और उसमें क्या होता है कि आप जब खेल रहे होते हैं और फिर आपको गोल भी करना है, आप अगर फुटबॉल खेलें या जो भी खेल खेलें तो उसमें एक प्रतिद्वंदिता भी होती है और एक सहभागिता भी होती है कि मुझे अपने टीममेट को देना है, कैसे भी इस बॉल को देना है, तो वो सारी चीजें, गुस्सा भी निकलता है और अंदर से जो सारा जो आज जो स्ट्रेस जो गुब्बार, बिल्कुल आज वो गुब्बार बना हुआ है, आज वो फट के बाहर नहीं निकलता है।
आजकल मैं देखता हूं कोई कंबाइंड स्टडीज वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना, हमारे टाइम पे कंबाइंड स्टडीज होते थे, हम सब एक फ्रेंड के घर जाके वहां से,
आजकल डिस्टेंस स्टडी होती है तो बिल्कुल, और सारी चीज, और योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, ये सब अगर आप करते हैं और बच्चों को ये करवाइए, क्योंकि ये सब काम बाद का नहीं, लोग कहते हैं कि ये सब चीजें हम बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके पास उसके बीज नहीं है तो वो फूल कभी खिल ही नहीं सकता है। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, वो आपको तरोताजा रखता है। और अगर आप संगीत सुनते हैं, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बच्चा जो वो जिस तरह से, अगर सुबह का है तो आप उसको सुबह का सुनाइए, शाम का है, रात का है, अगर आप बहुत अच्छी म्यूजिक सुन करके सोते हैं ना तो बहुत अच्छी हीलिंग होती है।
Absolutely.
और ये सब चीजें जो अब खत्म होती जा रही है या कहें कि बहुत कम है, लोगों को जानकारी तो है लेकिन लोग सोचते हैं कि छोड़ो सब पुरानी बातें हैं ये, लेकिन ये होता है कि जो पुरानी बातें होती है ना वहीं से नए का जन्म होता
है। Here are some helpful tips to reduce stress during exams. Follow these tips to manage your stress better and perform well in your exams. Well, the first one, as Alka rightly said, is stay calm and confident. According to the new CBSE guidelines for class 10th, 2024-25, a calm approach helps maintain focus. Confidence will help you manage time effectively and tackle challenging questions. Also, maintaining a balanced diet. मुझे याद है अलका, जब मैं जाता था तो मेरी मॉम स्पेशली मुझे दही वगैरह खिलाती थी।
दही और चीनी, बिल्कुल।
जी। A healthy diet and ample water intake not only keeps you physically healthy and active, but also mentally strong.
बिल्कुल।
And fruits, vegetables, legumes, lentils, nuts, seeds, and lots of water will ensure your body has enough energy to help you work hard.
बिल्कुल प्रमोद, और एक बात और है, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन बस एक छोटी सी बात यह है कि अगर आप ताजा खाएंगे ना, ताजा, तो आप ताजा सोचेंगे।
बिल्कुल, जैसे
बात बहुत छोटी सी है,
वैसा
होगा मन। और अगर आप ताजा खाते हैं ना तो निश्चित है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये जो एक तरह से फ्रिज में रख करके खाना दो दिन, मतलब इस तरह की चीजें जो है ना वो लोग समझते नहीं है, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर, और आपकी जो याददाश्त है ना वो भी थोड़ी थोड़ी धीरे 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 कमजोर होती जाती है।
ट्रू। Stay hydrated and eat well. Follow the CBSE's new guidelines for class 10th, which emphasize the importance of physical and mental health during exam time. And a healthy body leads to a focused mind. And these are the do's, but there are some don'ts also. Mm-hmm. The don'ts are don't panic.
Okay.
If you find a question difficult, don't spend too much time on it. Mm-hmm. Use CBSE's new guidelines for pacing yourself and focus on answering questions you know well before returning to the tougher ones. This was very important, Alka. जब मैं maths exam देने गया था, तो जो first question था, वो ही इतना tough था कि मेरा कुछ time तो दिमाग चकरा गया। फिर मैंने कहा, नहीं, उसको छोड़ो, let's do the question which I know, and then come back to this later. And when I came back to it, I was able to do it quicker. That means वो stress था जो मुझे रोक रहा था।
बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे केंद्रीय विद्यालय में भी जो हमारे teachers थे, जब हमारे प्री बोर्ड्स हो गए, उसके बाद जो पूरा एक महीने का समय था वो यही था कि आप questions को कैसे करेंगे। बिल्कुल। और उसमें ये था कि जो सबसे पहले और सबसे अच्छा आता है वो आप सबसे पहले करें, उसके बाद जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए उसको फिर लाइन ड्रॉ कर दें, डबल लाइन कर दें कि ये क्वेश्चन खत्म है, माने आंसर क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद फिर आप जो पार्ट बाय पार्ट एबीसीडी होता है, जब वो आपका पूरा खत्म हो गया तो फिर लाइन ड्रॉ कर दें। तो इस तरह से क्या है कि जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो इतना बढ़िया होता है कि जो आपका चेक जो आपकी मार्किंग होती है ना, तो अगर आपको समझ लीजिए कि अगर वो 90 दे रहे हैं ना, तो आपको 92 तो वैसे प्रेजेंटेशन को लेकर हैंडराइटिंग को लेकर के इन सब चीजों, क्योंकि हैंडराइटिंग अगर अच्छी है, उलझी हुई नहीं है, तो चेक करने वाला भी सुलझा हुआ रहता है और उसे ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता है। और निश्चित रूप से ये सब एक एक नंबर आपके जो है ना वो बाकियों से आपको बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, और आज ये बहुत आवश्यक हो चुका है कि आप बच्चों को ऐसा वातावरण दें कि वे अपने दिल की बात, अपने तनाव और विचारों को आपके साथ साझा कर सके। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे ये विश्वास करें कि उन्हें किसी गलत तरह से आंका नहीं जाएगा। जब माता पिता खुले संवाद को प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चों को अपनी चिंताओं और भय साझा करने में अधिक सहजता महसूस होती है। ये वातावरण न केवल माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध को सुदृढ़ करता है बल्कि बच्चों को भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाता है, जिनकी उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यकता होती है। परीक्षा पे चर्चा के दौरान भी ये बात सामने आई कि घर का वातावरण ऐसा हो जहां दोनों तरफ से खुले संवाद की संभावना बने। और एक बात और होती है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, चाहे वो 10th क्लास का ही हो, उसकी बहुत ज्यादा उम्र तो होती नहीं है, और वो एक ऐसी टर्निंग वाली उम्र होती है जो टीनेज हम कहते हैं, उसमें अगर आप उसके साथ खुला संवाद नहीं करेंगे तो आखिर वो अपने मन में जो उसके प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे वो परीक्षा से संबंधित प्रश्न हो या उसके जीवन से संबंधित प्रश्न हो, वो किसके सामने सुलझाएगा। और जब आप अपने बच्चे की कंपैरिजन किसी से करने लगते हैं कि उनका बच्चा तो देखो कितना बढ़िया है और तुम्हें ये भी नहीं आता है, नहीं, आप ये सोचे कि आपका बच्चा बिल्कुल यूनिक बच्चा है और वो अपने लिए इस दुनिया में आया है और अपने तरीके से करने के लिए आया है। वो इसलिए नहीं आया कि वो दूसरे से आपका उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं, क्योंकि आपका बच्चा एक अलग तरीके की सब चीज एनवायरमेंट, और आप घर के भी माहौल को जो है ना वो हम लोग बड़ा काम बना के रखे, कोई झगड़े नहीं, और बोर्ड का एग्जाम है उसको डिस्ट्रैक्ट ना होने दे कहीं भी, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज ना फिर बाद में बस वो अफसोस रह जाता है कि अगर हमने ये किया होता तो थोड़े से और मार्क्स अच्छे आ जाते।
अफसोस की कोई, बिल्कुल, कि अगर आपके पेरेंट्स खुद स्ट्रेसफुल हैं तो आपको भी दैट स्ट्रेस पासेस ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द किड्स। मेरे पेरेंट्स बड़े रिलैक्स थे बिकॉज़ दे न्यू दैट आई वाज स्टडीइंग, ठीक है, अंदर स्ट्रेस रहा होगा बट दे डिडंट प्रोजेक्ट इट आउटवर्ड्स।
नहीं, और दूसरी बात ये भी है ना कि आप जब बोर्ड है तो आप पूरे साल अगर आप तैयारी करते हैं ना तो फिर वो इतनी ज्यादा पैनिक नहीं होती है, क्योंकि आपका हर दिन का एक शेड्यूल रहता है कि आज मुझे 4 घंटा पढ़ना ही है या 6 घंटा पढ़ना ही है और इतना कंप्लीट करना है, फिर रिविजन करना है।
बिल्कुल,
तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलेंगे तो आप बिल्कुल आपका बिल्कुल मोर्चा फतह कर सकते हैं। और अगर माता
पिता So don't forget to rest and keep yourself calm and composed. And I take pride in wishing all our listeners all the best for the exams. What do you say?
बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दें और बहुत अच्छे से, बिल्कुल, जो मन में जितने मार्क्स आप सोच रहे हैं कि आपको मार्क्स आएंगे, बिल्कुल उतने मार्क्स आए और आप लोग बहुत अच्छे से अपना बोर्ड जो है वो कम्प्लीट करें।
जी,
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि क्या कुछ है उनके पास खास। इस वर्ष का 58वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन इस शुक्रवार नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज साहित्य नगरी में आयोजित किया जाएगा। पुणे स्थित सरहद संस्था के प्रावधान में आयोजित इस सम्मेलन में 21 से 23 फरवरी तक कवि सम्मेलन, साक्षात्कार और सेमिनार जैसे विभिन्न रोमांचक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारे पुणे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
58वें सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, अध्यक्षता डॉक्टर तारा भवाकर करेंगी, जबकि स्वागताध्यक्ष महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार है। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है, इस हिसाब से देश की राजधानी में हो रहा यह साहित्यिक सम्मेलन महत्वपूर्ण है। इस साहित्य महोत्सव में राज्य से बड़ी संख्या में तथा विदेश से भी साहित्य प्रेमी शामिल होंगे। परंपरा के अनुसार सम्मेलन का आरंभ ग्रंथ दिंडी से किया जाएगा। सम्मेलन स्थल पर बड़ी संख्या में प्रकाशकों के दालन होंगे। पहले दिन के अंतिम सत्र में आमंत्रित अतिथियों का कवि सम्मेलन होगा। इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनिंदा ख्याति प्राप्त कवि भाग लेंगे। दूसरे दिन मराठी पाउल पढ़ते पुढ़े इस विषय पर गणमान्य व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार, विशेष अभिनंदन सत्र, भूपाली से भैरवी तक लोक साहित्य, मराठी साहित्य में राजनीति के प्रतिबिंब तथा शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम मधुरो इसका आयोजन होगा। इसी दिन बहुभाषी कवि सम्मेलन, बृहद महाराष्ट्र के मराठी लोगों का जीवन और साहित्य तथा मराठी भाषा और राष्ट्र धर्म जैसे विषयों पर संगोष्ठियां होंगी। रविवार 23 फरवरी अंतिम दिन पर ऐसे बने हमारे जीवन, सामाजिक कार्य और मराठी साहित्य, दिल्ली के साथ मराठी संबंध आदि विषयों पर साक्षात्कार जैसे कार्यक्रम होंगे। 19 फरवरी को पुणे से दिल्ली के लिए एक विशेष ट्रेन आएगी और इसी ट्रेन में भी अपनी तरह का पहला साहित्यिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस विशेष रेलगाड़ी का नाम महाजी शिंदे एक्सप्रेस रखा गया है। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन आ रही है और उसमें भी कवि सम्मेलन और साहित्यिक गतिविधियां होंगी। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है ये। और चलते हैं झारखंड। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में औद्योगिक नगरी जमशेदपुर पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। 16 फरवरी को इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे और कई आयोजन किए जाएंगे।
झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। 16 फरवरी को इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे और कई आयोजन किए जाएंगे।
लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका में किस तरीके से देखते हैं ये तो आप बयान करेंगे। हम तक सूट करने वाले लोग, हम तो इन चीजों को लाने वाले करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से हमें ये लगता है कि मॉडर्नाइजेशन के इस एज में जब टूरिज्म की परिभाषा भी बदल रही है तो झारखंड को उसके साथ कदम ताल करना चाहिए।
23 फरवरी तक चलने वाले स्काई डाइविंग फेस्टिवल के पहले दिन कुल 9 लोगों ने स्काई डाइविंग की। इनमें झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोग भी शामिल थे। स्काई डाइविंग करने के बाद किसी भी डाइवर के चेहरे पर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वे मुस्कुराते हुए ग्राउंड से बाहर आए। उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि उन्होंने वो हासिल कर लिया है जो वो चाहते थे। कई लोग ऐसे थे जो अपने अनुभव को शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रहे थे। सभी काफी रोमांचित थे।
एक बार करना चाहिए, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, अच्छा भी है। प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग ट्रेनिंग वेनिंग सब करके दिया था तो अच्छा भी लगा। हम तो असिस्टेंट लोको पायलट है, खड़कपुर, बहुत अच्छा लगा। हम ट्रैकिंग में गए थे, थोड़ा सा डर भी लग रहा था फिर, पर हो गया। फिर
महोत्सव के आयोजक स्काई हाई इंडिया के सह संस्थापक दिग्विजय सिंह ने बताया कि झारखंड स्काई डाइविंग फेस्टिवल आयोजित करने वाला देश का 5वां राज्य है। इससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन किया जा चुका है।
लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका में किस तरीके से देखते हैं ये तो आप बयान करेंगे। हम तक सूट करने वाले लोग, हम तो इन चीजों को लाने वाले करने वाले लोग हैं। आज तक रिलीजियस टूरिज्म, वाटरफॉल और लेक के टूरिज्म से बाहर निकलकर हम लोगों को एडवेंचर टूरिज्म की ओर भी जाना चाहिए, ट्रेकिंग पर भी जाना चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग पर भी जाना चाहिए, हर उस विधा की ओर बढ़ना चाहिए जो ग्लोबली पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में हो रहा है। झारखंड भी उसके साथ चलेगा।
पर्यटक हर दिन सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक स्काई डाइविंग का लुत्फ उठा रहे हैं। परिक्रमा के लिए जमशेदपुर से कुणाल शर्मा के साथ रांची से शिल्पी की एक रिपोर्ट।
In Andhra Pradesh, the 3-day second edition of the International Temples Convention and Expo, ITCX 2025, was inaugurated yesterday in Tirupati. The 3-day convention will host workshops and expert sessions on temple administration and governance and aims to serve as a platform for global temple collaboration. A report.
International Temples Convention was inaugurated in Tirupati yesterday with the chanting of Govinda, invoking Lord Venkateswara. Chief Minister of Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Goa Chief Minister Pramod Sawant and Union Minister of State for Power Sripad Yesso Naik participated in the event. Speaking on this occasion, N. Chandrababu Naidu emphasized the importance of preserving temple heritage while integrating technology and fostering economic growth within temple ecosystems.
ITCX 25 focuses on engaging, empowering and enhancing the temple economy, recognizing temple as not just spiritual centers but also economic, cultural hubs. I don't have any doubt this is a great legacy inherited by India.
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis said that this conference will produce template for better temple administration and governance in the country. Goa Chief Minister Pramod Sawant referred to the convention as the Mahakumbh of temples and said that the convention would mark a turning point for temple tourism in India. Sri Sai for Parikrama from Visakhapatnam.
The Adi Mahotsav 2025 is underway at Major Dhyanchand Stadium in New Delhi. This 10-day festival aims to provide a glimpse into the rich and diverse traditional culture of the tribal communities of our country. More from our correspondent.
Adi Mahotsav brings together over 600 tribal artisans, 500 performing artists and 25 tribal food stalls, representing the diverse traditions of more than 30 states and union territories. The key highlights of Adi Mahotsav include live demonstration by tribal artisans from various states of the country showcasing unique tribal crafts. People visiting the festival have been shopping at the stalls of tribal paintings, dry fruits, bags, purses, wood items, handloom products, pickles and decorative items from different state stalls. An exhibitor from Jharkhand, Dileshwar Lohara, said that this festival is a good platform to showcase tribal traditions.
इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि आदिवासी भाई बहने और जो राष्ट्र के स्तर पर उनका योगदान जो उनका पारंपरिक जो विरासत है संस्कृति है बचा हुआ है उनको यहाँ पर एक मंच मिलता है और हमें इस तरह के जो आयोजन से या कहें कि जो कला प्रेमी हैं आदिवासी कला से जो जानकारी लेना चाहते हैं उनको एक बड़ा मंच मिलता है यहाँ पर.
Another exhibitor named Urmila Sagar from Chhattisgarh, who is showcasing different shapes made from the steel metal, said that good facilities have been provided by the government to display her products.
सरकार की तरफ से किस तरह की मदद बोलने से हमको मेला मिल रहा है बस एग्जीबिशन मिल रहा है स्टॉल फ्री में दिया जा रहा है बाकी खर्चा वो उठा रहे हैं.
The festival is a significant initiative under the mission to create sustainable livelihood opportunities for India's tribal communities. For Parikarma, Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
और अब कुछ खेल समाचार.
That's right. In the hockey FIH Pro League, the Indian men's team will take on Germany, while the women's team will face Spain at the Kalinga Hockey Stadium in Bhubaneswar, Odisha this evening.
बिल्कुल. और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम बड़ोदरा में गुजरात जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
18th February is the day when the Indian Home Rule Society was founded in London in 1905. The Indian Home Rule Society sought to promote the cause of self-rule in British India. The organization was founded by Shyamji Krishna Varma with support from a number of prominent Indian nationalists in Britain at the time, including Bhikaji Kama, Dadabhai Nauroji and S.R. Rana.
The Indian Home Rule Society was a metropolitan organization modeled after Victorian public institutions of the time. It had a written constitution, and the stated aim was to secure home rule for India and to carry on a genuine Indian propaganda in Britain by all practicable means. The IHRS was open for membership to Indians only. It found significant support amongst Indian students and other Indian populations in Britain.
The Indian Home Rule Society maintained close contact with revolutionary movements in India. The society was the founder of the India House in London. India House was a student residence that was open to promote nationalist views among Indian students in Britain. The Indian Home Rule Society, along with Shyamji Krishna Varma's journal, The Indian Sociologist, laid the foundation of the militant Indian nationalist movement in Britain. After Shyamji Krishna Varma shifted to Paris in 1907, the society gave way to the secret nationalist society of Abhinav Bharat Mandal, founded by V.D. Savarkar.
February 18 is also the day when the Royal Indian Navy Revolt of 1946 started in Mumbai. The strike by the ratings of the Royal Indian Navy came at a time when the Indian nationalist sentiment had reached its peak with the launch of Quit India movement and the end of the Second World War. It was triggered by a group of 20 young ratings of the Royal Indian Navy stationed on the HMIS Talwar.
While the immediate trigger was the demand for better food and working conditions, the agitation soon turned into a wider demand for the release of all political prisoners and independence from British rule. The day after the strike began, the ratings went around Mumbai in lorries, waving the Indian flag and fought with Europeans and policemen who tried to stop them.
As HMIS Talwar was also the communications training school, the ratings used wireless codes to communicate among themselves and to spread the message across all naval stations. Within a few days, the rebels had managed to take control of 74 other ships stationed in Mumbai, Karachi, Chennai, Kolkata, and other parts of the British Empire. The reports on radio and in newspapers spread like wildfire. Soon, ordinary people also joined the ratings in the revolt, and life came to a virtual standstill in both Mumbai and Kolkata. There were meetings, processions and strikes in many cities across India. Students boycotted classes in solidarity.
The response of the state was brutal. Hundreds of Indian citizens were killed and thousands were injured in the British police firing on the demonstrators. Finally, Sardar Patel managed to make the ratings surrender on the 24th of February 1946. The revolt of the naval ratings remains a legend today. It was an event that further strengthened the determination among all sections of the Indian people to see the end of British rule. In memory of the revolt, a naval uprising memorial stands today in Mumbai.
प्रयागराज में 1911 में आज ही के दिन यानी 18 फरवरी को दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा का शुभारंभ हुआ था।
यह ऐतिहासिक घटना महाकुंभ के दौरान हुई थी जब फ्रेंच पायलट हेनरी पिक्वेट ने अपने विमान में 6,500 पत्रों को लेकर प्रयागराज से नैनी के लिए उड़ान भरी। यह विमान हैवी लैंड एयरक्राफ्ट था और इसमें महज 13 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय की। भारत में डाक सेवाओं पर तमाम लेख लिख चुके पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि प्रयागराज में उस दिन इस विमान की उड़ान देखने के लिए लगभग 1,00,000 लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर प्रयागराज में ऐतिहासिक उत्सव का वातावरण था।
यह खूबसूरत संयोग था कि उस साल कुंभ मेला भी लगा था। 18 फरवरी 1911 को फ्रेंच पायलट हेनरी पिकेट ने हम्बर बाई प्लेन में लगभग 6,500 कार्ड और पत्रों से भरा एक बैग लेकर के उड़ान भरी थी। इस मेल बैग पर पहली हवाई डाक और उत्तर प्रदेश प्रदर्शनी इलाहाबाद लिखा था। इस विमान ने शाम को 5:30 बजे जमुना नदी के किनारों से उड़ान भरी और वह नदी को पार करता हुआ लगभग 13 मिनट में करीब 6 मील का सफर तय कर नैनी जंक्शन के नजदीक उतरा, जो प्रयागराज के बाहरी इलाके में सेंट्रल जेल के नजदीक था। इस पहली हवाई डाक सेवा का विशेष शुल्क सिर्फ और सिर्फ 6 आना रखा गया था और इससे होने वाली आय को ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज हॉस्पिटल इलाहाबाद को दान में दिया गया। इस सेवा के लिए पहले से ही पत्रों के लिए बहुत खास व्यवस्था बनाई गई थी। 18 फरवरी को दोपहर तक इसके लिए पत्रों की बुकिंग की गई और उस दौर में पत्रों की बुकिंग के लिए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हॉस्पिटल में ऐसी भीड़ लगी, उसकी हालत एक तरह से मिनी जीपीओ सरीखी हो गई थी। यहाँ तक कि यहाँ पर डाक विभाग ने भी 3 से 4 कर्मचारी तैनात किए और चंद रोज में इस हॉस्टल में हवाई सेवा के लिए 3,000 से ज्यादा पत्र पहुंच गए थे। एक पत्र में तो उस दौर में 25 रुपए तक का डाक टिकट लगा था। पत्र भेजने वाले में प्रयागराज की कई नामी गिरामी हस्तियां तो थी ही, तमाम राजा महाराजे और राजकुमार भी थी।
इस सेवा का शुल्क 6 आना तय किया गया था और इससे प्राप्त आय को ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज हॉस्टल इलाहाबाद को दान में दिया गया था। डाक विभाग ने इसके लिए विशेष व्यवस्था की थी। परिक्रमा के लिए करिश्मा राय।
और आज हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री नलिनी जयवंत को। उनका जन्म 18 फरवरी 1926 को हुआ था। और प्रमोद, आज ही सुप्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद जहूर खय्याम को भी हम याद कर रहे हैं।
आँखों में हमने आपके सपने सजाए
और प्रमोद, इन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया लेकिन जितना काम किया बड़ा उम्दा काम किया और उनके गीत और धुन सदा के लिए अमर हो गए।
जा रे,
आज हम याद कर रहे हैं मासूम किंतु संजीदा अभिनेत्री निम्मी को। उनका असली नाम नवाब बानू था।
देखे सब देखे हम तरसे हो सब देखे हम तरसे सूरज देखे चंदा देखे सब देखे।
और प्रमोद अब समय है श्रोताओं से अनुमति लेने का। तो और यदि आप कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और सुनते रहिए
परिक्रमा। हम दोनों की तरफ से
नमस्कार।